साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पुकारता है परमात्मा को, जब भक्त की चित्कार हृदय को चीरती हुई परमात्मा के हृदय तक पहुंचती है, परमात्मा के पास कोई दूसरा रास्ता रह ही नहीं जाता, दौड़ा आता है भक्त के पास। परमात्मा प्रेम के वश में है, कहते हैं केवल प्रेम, अनकंडीशनल लव, ऐसा प्रेम ये केवल आप देना चाहते हैं परमात्मा को, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। जब ऐसी अवस्था पर हमारा हृदय पहुंच जाए, जब ऐसी अवस्था पर हमारा मन पहुंच जाए, हमारे बुद्धि, हमारा अहंकार, सब कुछ केवल एक ही ईश्वर को पाना चाहे, समाधि लग जाती है। मेरा भाई राज घराने से होते हुए भी मेरे तो गिरधर गोपाल केवल भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब गई। ये भी कहा जाता है कि उनको विष दिया गया ताकि उनको मार दिया जाए, विष अमृत बन गया। फूलों की माला की जगह उनको सांप भेजा गया, वो फूलों की माला बन गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, हर पल हर क्षण परमात्मा के गुण गाने लग गई, अपने आप को संपूर्ण रूप से खो दिया माता मीरा जी ने। शबरी गुरुओं ने कहा था कि यहां पर राम आएंगे, पता नहीं कितने वर्षों तक तपस्या करी, कितने वर्षों तक इंतजार करती रही, रोज अपने झोपड़ी की बुहारी लगाती, साफ करती, ताजे फल तोड़ के लाती, मेरे राम आएंगे आज, मैं उनको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, मेरे राम। जिस पगडंडी से राम को आना था, जब झोपड़ी के बाद जो पगडंडी थी, जो रास्ता था, उसको भी साफ करती थी, राम आए तो उनके पांव में कांटा ना लग जाए। राम आए लक्ष्मण के साथ, शबरी ने एक एक बेर को पहले चख कर कि खट्टा है या मीठा है, फिर राम जी को अर्पित किया। ये ध्यान में नहीं ना, मैं जूठे बेर खिला रही हूं। प्रेम के वश में प्रभु राम ग्रहण करते क्या बेरों को। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महात्मा विदुर के घर गए, महात्मा विदुर तो भाव विभोर हो गया कि परमात्मा उनके घर में पधारे। राजमहल का दुर्योधन का भोजन छोड़ के, महलों के पकवान छोड़ के, दासी पुत्र विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुर जी फूले नहीं समाए, कहते हैं उनको छिलके खिलाने लग गया केले की जगह। ध्यान नहीं रहा, भगवान खाते गए। भगवान प्रेम के वश में। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया कि अपने पुत्र प्रहलाद को किसी भी प्रकार से पहले तो मनाए कि सृष्टि में कोई भगवान है तो हिरण्यकश्यपु है, उसकी पूजा हो, उसकी आराधना हो, उसकी आरती हो। लेकिन हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को ना मना पाया, प्रहलाद केवल नारायण का नाम जपता रहा। फिर उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, पानी में डुबोने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंकने का प्रयास किया, जहां तक कि होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में डाल दिया, तब भी प्रहलाद बच के निकल आए। अंत में भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आए, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। हिरण्यकश्यपु अहंकार से पीड़ित था, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना आसमान में ना धरती में, ना पशु से ना मानव से, ना देवताओं से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। लेकिन नरसिंह अवतार आधे पशु आधे मानव, ना घर के भीतर ना बाहर, ना दिन ना रात, घर की चौखट में संध्या वेले अपनी जांघों में रखे अपने नाखूनों से मार दिया। न अस्त्र था न शस्त्र था, न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न आसमान न जमीन, न देवता न मानव न मनुष्य न पशु। प्रहलाद भक्ति में लीन था नारायण की। तुम क्या कहना चाह रहे हैं? भक्ति से आप परमात्मा को पा सकते हैं, ज्ञान से भी पा सकते हैं, कर्म से भी पा सकते हैं, लेकिन भक्ति से पाना आसान है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, इस अध्याय को गीता का हृदय बोला जाता है। जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में 5वां अध्याय सुंदरकांड रामायण का हृदय माना जाता है, इसमें हनुमान की भक्ति, हनुमान जी का सेवा भाव, हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी की बुद्धि, उनकी बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की निष्ठा, ये सब दिखाई गई है। भक्ति है क्या चीज? अंग्रेजी में कहा जाए तो लव फॉर गॉड, परमात्मा के लिए प्रेम ही भक्ति है। बस सरल भाषा में, सारांश में, इन समरी, इन शॉर्ट, जब आपके भीतर निष्काम कोई भावना हो, निष्काम भाव हो, आप केवल परमात्मा से प्रेम करें, केवल प्रेम के लिए, लव गॉड फॉर द सेक ऑफ लविंग गॉड, प्रश्न जी उठता कि भगवान को आप पाएंगे कहां पर? व्हाट डू यू मीन बाय लव गॉड? परमात्मा से प्रेम करो मतलब क्या हुआ इसका? जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उनसे कोई बोलता था जय राम जी की, कहता नहीं जय राम जी की, उनकी समाधि लग जाती थी राम के नाम से। स्वामी जी जय श्री कृष्ण, कृष्ण के नाम से समाधि लग जाती थी। आप परमात्मा कोई नाम बोलो तो सही, वो उसमें डूब जाते थे। उन्होंने अपने माइंड को डायरेक्शन दे रखी थी, राम बोले तो राम डूब गए, कृष्ण बोले कृष्ण डूब गए, माता काली का नाम लिया तो माता काली के ध्यान में डूब जाते थे। तो हम कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? किस तरह आपको ध्यान लगाना चाहिए? कौन से होने चाहिए आपके आराध्य देव? भक्ति नवदा भक्ति है, नौ प्रकार की। आरंभ होते श्रवणम, कान से सुनना। सबसे पहले आप किसी के बारे में अपने कानों से सुनते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा आती है, उस व्यक्ति से मिलने की जिसके बारे में बात हो रही है, उस जगह में जाने की जहां की बात हो रही है, यहां तक उस मूवी को, उस फिल्म को देखने की जिसकी बात हो रही है। अन्य शब्द में बोला जाए तो हमारे कान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो सुनते हैं। भगवान ने आपको दो कान दिए, एक मुंह दिया, एक जीभ दिया, सुनो ज्यादा बोलो कम, लेकिन हम सुनते क्या, हमारे पास चॉइस है। हम सुनते क्या, हम केवल गपशप सुनना चाहते हैं। जो आदमी हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले, हम उससे बात करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति आपके बारे में अच्छी बात बोले, आपका गुणगान गाए, आप उसी से बात करना चाहेंगे। हजारों लोगों के बीच में वो खड़ा हुआ पहचान लेंगे वो आदमी अच्छा आदमी है, आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी लगता है, द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। व्हाई? क्योंकि वे आपके गुण गाता है, गुणगान करता है आपका। और जो आदमी आपकी बुराई कर रहा हो वो सबसे खराब दुनिया का। कान को दो चीजें पसंद है, एक अपना गुणगान सुनना और अपने दुश्मन की बुराई सुनना। अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बोले बड़ा मजा आता सुन के। और जिसको आप नहीं चाहते, जो आप व्यक्ति आपका पसंद नहीं है, उसके बारे में बुराइयां करें, वो मजा आता है। मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार पुट्टपर्ती में एक प्रोफेसर जी आश्रम से बाहर गए, वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने भगवान बाबा के बारे में कोई गलत बात बोल दी होगी, तो प्रोफेसर साहब वहां से लौट के आए, उन्हें स्वामी से बोले, स्वामी मैं गांव गया था, वहां वो लोग आपके बारे में बुराइयां कर रहे थे। स्वामी ने बोला, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? स्वामी आई वॉज प्रेजेंट देयर। कहते हाँ तुम प्रेजेंट थे, तुम आप उपस्थित थे, लेकिन तुम्हें पता कैसे लगा तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं मेरी? स्वामी मैंने उन्हें अपने कानों से सुना, आई हर्ड फ्रॉम माय ओन ईयर्स। भगवान बाबा कहते हैं, भाई अगर तुमने अपने कानों से बात सुनी थी, अपने पांव से चल के जा भी सकते थे वहां से, यू हैड द चॉइस। जब आपके सामने कोई व्यक्ति बुराई कर रहा हो किसी की, तो आपको किसने बोला वहां खड़े होकर सुनो? यू कैन वॉक अवे, आप वहां से जा सकते हैं, लेकिन यू चूज नॉट टू डू दिस। हमारे कान शुद्ध नहीं हो रहे हैं। जब मन के भीतर मलबा जाएगा तो मलबा ही जीभ से बाहर आएगा। बुराइयां सुनोगे तो मुंह से वही निकलेगी, बुराइयां ही निकलेंगी। एक बार थोड़ा गंध अंदर चला जाए क्या कर सकता है, जानना चाहते हैं आप? आजकल बोलबाला है कोरोना वायरस का, थोड़ा वायरस आपके अंदर आ गया, आपकी मौत हो सकती है। ऐसे डॉक्टर्स कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ऐसे मीडिया कह रही है, पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, रेडियो में आ रहा है। एक थोड़ा सा खतरनाक वायरस आपके अंदर गया, आपके सांस लेने की शक्ति खराब हो जाए, आपके लंग्स खराब हो जाए, आप राम को प्यारे हो जाए, वाओ। इसी प्रकार से अगर किसी की बुराई आप सुनते हैं, आपके भीतर जाके ना जाने वह क्या घुल रही है, इट इज लाइक एन पॉइजन, लाइक ए पॉइजन। कभी भगवान शंकर को देखा आपने? नीलकंठ, नाम नीलकंठ क्यों पड़ा? जब सागर का मंथन हुआ था, सागर के मंथन में सबसे पहले वहां से हाल हाल विष बाहर निकला था। विष इतना स्ट्रांग था, विष में से धुआं निकल रहा था, यू समझे लपटे निकल रही थी, उसका जहरीलापन सारे वातावरण को दूषित कर रहा था। वातावरण में सब प्राणी मरने लग गए। लोग भागे भगाए शंकर भगवान के पास गए, बोले भैया हम क्या करें, ये विष तो बहुत ही तीव्र है। भगवान शंकर ने विष को अपने गले में रख लिया, ना निगला ना पिया ना बाहर निकाला, गले में रख लिया। इतना स्ट्रांग था, इतना तीव्र था वो विष, उनका गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। भगवान शंकर ने विष को पिया नहीं, गले में रखा है, ध्यान दीजिएगा, उगला भी नहीं है। अगर आप किसी की बुराई सुनते हैं उसको गले में रख लें, नीचे निकाले नहीं, बाहर उगले नहीं, किसी और को जाके बोले नहीं, अंदर डाइजेस्ट नहीं कर लें, आप भी नीलकंठ बन जाएंगे। इसी प्रकार से हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारा नाक, हमारी नाक माफ कीजिएगा, हमारा चित्त, हमारी कंटेम्पलेशन पावर, मन की शक्ति, कितनी बार हमने बैठ के परमात्मा का मनन किया, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव ऑनेस्टली कंटेम्पलेटेड ऑन गॉड। हमने मनन किया, वो व्यक्ति मुझे ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, वो ये खा रहा है, वो ये पी रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है, दुनिया पर का मनन किया है, उन लोगों पर ज्यादा मनन किया है जो हमारे अगेंस्ट बात करते हैं, जिनसे हमारी बनती नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, और जिनसे बनते उसके बारे में नहीं सोचते। कितनी बार आपने बैठ के अपनी माँ के बारे में सोचा है? दुनिया में सबसे ज्यादा कोई आपको प्रेम करता है तो आपकी माँ है। कितनी बार आपने बैठ के अपने मां का मनन किया है? कितनी बार आपके मन में आया कि जाके मां की सेवा करूं, मां के पांव दबाऊं, मां का सर दबाऊं, मां को आराम दूं, मां को भोजन बना के दूं, मां को प्रसन्न करूं? ये पश्चिम देशों की बात छोड़िए, मदर्स डे की बात, वो नौटंकी की बात नहीं कर रहे हम। मां से बड़ा कोई देवता है दुनिया में क्या? भगवान को तो तब पाओगे जब अपनी मां की सेवा कर पाओगे, अन्यथा भगवान कभी आपको मिलने वाले नहीं है। व्हाट्स एवर यू मे ट्राई, सो कुछ भी प्रयास कर लें, जो अपनी मां का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। अपने मन में भ्रांति पाल सकते हैं आप, यू मे लिव इन इल्यूजन। परमात्मा प्रेम से मिलता है, या तो इन टोटैलिटी परमात्मा के ध्यान में डूब जाए, प्रेम में डूब जाए, वो बहुत मुश्किल है, या परमात्मा को सर्वव्यापी समझते हुए सब जगह देखें, कण कण में ईश्वर के दर्शन हो आपको, या ये बात मान लें कि गॉड रिजाइड्स इन एवरीथिंग, परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, चाहे पत्थर हो या पशु हो या मानव हो या मनुष्य हो या देवता हो। जब भगवान सबके अंदर है तो आप किसी गरीब की सेवा भी कर सकते हैं। जो दुखी है उसकी सेवा कर सकते हैं। ईश्वर को पाना है तो हर जगह ईश्वर को देखना होगा, सुपर इम्पोज नहीं करना, ऊपर से डालना नहीं है। ये बात आपके हृदय में बैठ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। गीता का 12वां अध्याय जिसकी बात कर रहे थे हम, वह तो कह रहा है कि ईश्वर को आप किस प्रकार से पूजें, निराकार में साकार रूप में। कृष्ण ने बोला साकार रूप में, फिर आगे बात होती है मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, या भक्त के अंदर क्या गुण होने चाहिए। बहुत से गुण है, 30-32 नामों की या तरीकों की लिस्ट होगी मेरे ख्याल से। जब राम जी वनवास चले गए, जब राम जी वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण आ गए, भैया चलो चले। राम जी, तुम कहाँ जा रहे हो, वनवास तो मेरे को जाना है। कहते भैया मैं आपके बिना सोच नहीं सकता, मैं आपके बिना एक दिन रहा हूं, बिना आपकी सेवा किए मेरा दिन शुरू नहीं होता, खत्म नहीं होता, मैं नहीं रहता यहां पर। राम जी बोले चलो फिर। वनवास में थे तो भरत वहां पर उनको लिवाने के लिए आया, राज्य वापस किया, पर प्रभु वापस चलिए मैं वन में रहूंगा। भगवान राम बोले नहीं, पिताजी के वचन के कारण, जहां हालांकि उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला था, फिर भी मुझे यहां वन में रहना है, तुम जाओ भैया, तुम जाके राज्य संभालो। कहते हैं भरत लौट के आ रहे थे, वो राम जी के पादुका लेके आ गए, वो साकार रूप है। लक्ष्मण दिन रात राम जी की सेवा कर रहा था, दिन रात 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं है, रात को जाग जाग के पहरा देते रहे, राम जी को ही देखते रहे हैं। और दूसरी ओर भरत अयोध्या के बाहर जाके नंदी ग्राम में रह रहे हैं, वहां उन्हें पादुका रखी हुई है, उन पादुका की पूजा करके पादुका से परमिशन लेके आज्ञा लेके राज्य को चलाते हैं। वो इतना ज्यादा राम जी के बारे में सोचते थे, 14 वर्षों में भरत की शक्ल हूबहू राम जी से मिल गई। जब राम जी अयोध्या लौट के आए 14 वर्षों के बाद, वहां अयोध्या वासी पहचान नहीं पा रहे थे कि भरत कौन है, राम कौन है, दोनों एब्सोल्यूटली एक जैसे लग रहे थे। 14 वर्षों तक राम जी के ऊपर मनन करने से उनका स्वरूप बदल गया, उनका शक्ल बदल गई। कुछ भी काम करते थे राम जी को अर्पित करके, उसको भी भक्ति कहा गया। या तो लक्ष्मण की तरह आप भक्ति करने लग जाएं, या राम जी की तरह, माफ कीजिए लक्ष्मण की तरह। आपने भगवान को पकड़ना है। एक और बात आ गई, कभी देखा आपने बिल्ली को, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ने चलती है, बच्चा अपने आप को छोड़ देता है, उसे पता है मेरी मां मुझे संभाल लेगी। बिल्ली यहां से वहां कूदती है बच्चे को मुंह में लेके, बच्चे को पता है मैं गिरूंगा नहीं, मां ने पकड़ा मेरे को। और दूसरी ओर बंदरिया का बच्चा मां को गले से पकड़ लेता है कस के, छोड़ता नहीं है। या तो बंदरिया की भांति बन जाए, बंदरी आपको वहां से वहां पार करती रहेगी, या अपने आप को टोटलिटी में बिल्ली की तरह सौंप दें। दोनों जगह से आप सरेंडर कर रहे हैं, आपको अपने आप को समर्पित करना ईश्वर को, रास्ते अपने आप आपके भक्ति के खुल जाएंगे। जय श्री राम।